शंकर भी यही धारणा करते होंगे कि बहुत
शंकर जी तो नाम ही है शंकर जी। शंकर का नाम मतलब क्या होता है, है? शंकर माना वैरायटी, सब का बाप, एक का बाप नहीं, दस का बाप नहीं, सौ का बाप नहीं, सौ करोड़ का बाप नहीं, क्राइस्ट के रेट 150 करोड़ का बाप नहीं, कितने का बाप? 500 करोड़ का बाप। बापों का बाप और पतियों का, पतियों का पति।
नाइनटीन 1969 के पहले जो जो मूर्तियां चली वो 69 के बाद रिवाइज हुई
है,
ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद। तो 1969 के पहले कुछ मूवियों में बात आई है सिलेंडर घड़ी और लीवर घड़ी। ये सिलेंडर घड़ी लीवर घड़ी क्या होता है?
तो घड़ी वाला आने वाले ज्यादा जानते होंगे। एक होती है उसमें इस तरह का वो स्प्रिंग लगा होता है, क्या हाँ वो स्प्रिंग जैसे जैसे घूमती है तो पेंडुलम को हिलाता जाता है। हाँ जी, और लीवर घड़ी, लीवर होता है ना पेट में, घूमता रहता है, भुदकता रहता है।
लीवर घड़ी बन रहा है ना कि सिलेंडर घड़ी,
तो अच्छी बात है ना। सिलेंडर होना अच्छा है या लीवर अंदर अंदर धुकधुकाता रहे, स्वयं ही चलता रहे, वो ज्यादा अच्छा है, है? सरेंडर होना अच्छा है क्या, है? तुम बच्चे बाप को सरेंडर नहीं हुए, बाप ने आकर के तुमको अपना बनाया है ना। सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है, जो रावण संप्रदाय बन जाते हैं उनको सरेंडर होने की दरकार है। और जो एक आत्मा विभिचारिणी नहीं बनती है उसको सरेंडर होने की दरकार है ही नहीं, बाप स्वयं उसे अपना बना लेता है।
पापा इस शंकर जी को झाड़ का चित्र बहुत अच्छा है, कोई चित्र क्यों अच्छा?
जब विदेशी बन करके आया हुआ है तो विदेशियों को कौन सा चित्र अच्छा लगना चाहिए, है?
जब शिव पसंद करते हैं स्मृति को, लक्ष्मी नारायण को, तो फिर शंकर जी क्यों नहीं पसंद?
किसको?
स्मृति के चित्र को, लक्ष्मी नारायण, शंकर जी क्यों पसंद नहीं?
शंकर जी को, शंकर जी को विनाश करना है,
झाड़ का विनाश करना है,
सारे झाड़ का विनाश करना है। तो जिसका विनाश करना है वही देखने में आएगा। अर्जुन ने तीर मारा चिड़िया को, चिड़िया को तीर मारा, उसकी आंख को तीर मारा, क्या डायरेक्शन मिला? आंख को तीर मारना है, आंख खलास कर देनी है, तो आंख ही दिखाई पड़ेगी या चिड़िया दिखाई पड़ेगी? तो गुरुजी ने पूछा तुमको क्या दिखाई पड़ता है, तो कहा हमें चिड़िया की आंख दिखाई पड़ती है। तो बाप विदेशी बन करके आया हुआ है तो क्या दिखाई पड़ेगा?
झाड़ी
दिखाई पड़ेगा, झाड़ झंकार खलास हो, कैसे मेरा काम पूरा हो। और
बाबा जो बात ऐसी
है जी,
लौकिक और अलौकिक ऐसे दोनों का पोता नहीं देना चाहिए, इसे बाबा ने कहा। लेकिन जो लौकिक जो ब्रह्मा कुमारी जो है वो लौकिक बन जाती है, ब्रह्मा कुमारी में जब बेसिक में आते हैं तो लौकिक हो जाता है, और जब एडवांस में आते हैं तो अलौकिक बन जाते हैं। पोता में किसका देना, वो लौकिक अलौकिक क्या है? ब्रह्मा कुमारी में जब थे और अभी का किसका पोता बन
गया?
लौकिक में तो लौकिक बाप ने जो जन्म दिया क्या माँ बाप ने, तो वहाँ से जन्म जो हमारा जो स्थूल जन्म होता है,
अच्छा है,
तो वहाँ से यहाँ
ब्रह्मा को भी हम लौकिक नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा भी तीन तबके में से एक तबके का है, वो सूक्ष्म बतनवासी है, लौकिक नहीं कहेंगे। सूक्ष्म बतन से नीचे की स्टेज वो लौकिक है। देह और देह के संबंधों की दुनिया वो लौकिक है। ब्रह्मा के द्वारा तो आकर के बता दिया तुम आत्मा हो, तुम ज्योति बिंदु हो, ज्योति बिंदु आत्मा का बाप शिव ज्योति बिंदु है, ये बेसिक नॉलेज तो मिल गई ना। तो जब अपने को आत्मा समझ लिया, ब्राह्मण बन गए, तो ब्राह्मणों की दुनिया लौकिक है या अलौकिक है?
अलौकिक जन्म होता है वहाँ से अभी तक का लेना चाहिए
जी,
जो लौकिक जन्म अभी से अभी तक का पोता नहीं देना चाहिए।
बोला तो यही है कि बचपन से लेकर के अब तक का जो भी पोता मेल है वो बाप को बताना चाहिए।
अरे इस वर्ग के रचयिता आप उनकी दादी रचयिता आप और दादा स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवी रचयिता आप और दादा वो स्वर्ग के रचयिता।
अरे एक माता बोल रही है बोलने में,
माँ और दादा हमारे मुख्य स्वर्ग के रचयिता तो वही संगम युगी लक्ष्मी नारायण कहेंगे या संगम युगी लक्ष्मी नारायण स्त्री और पुरुष और संगम युगी लक्ष्मी नारायण, क्योंकि ये तो सत्युग के देवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। एक्चुअली ये तो ये बोलना चाहिए कि संगम युगी तुम्हारा जन्म से, क्योंकि संगम युग में पुरुषोत्तम
क्या कह रहे हैं
संगम युगी, संगम युग में जो पुरुषोत्तम आत्माएं होती है वो प्रत्यक्ष होती है, तो संगम युगी लक्ष्मी नारायण
निकली
चाहिए ना। तो
सत्युगी
दैवी स्वराज
संगम युग तो सन 36 से शुरू होता है और 2036 तक जाता है, इसलिए संगम युग ही नहीं कह सकते स्वराज्य, दैवी स्वराज्य तब कहेंगे जब नारायण बन जाए, 16 कला संपूर्ण बन जाए, तो आज में नहीं होगा वो अंत में ही कहा जाएगा। जब तक विष्णु की प्रत्यक्षता नहीं होती तब तक नारायण की भी प्रत्यक्ष स्टेज पर देखने की बात नहीं है, मन बुद्धि से समझा जा सकता है। राज्य की भी बात नहीं है,
बाबा कहते हैं जो बाप की सेवा करते हैं उनके पैर के नीचे कीटाणु मरते हैं, जो बाबा कहते हैं जो बाप लोग की सेवा करती है तो उनके पैर के नीचे कीटाणु मरते हैं तो ही बाप बन जाता है, जो माताएं धान्य के कीटाणु मारते हैं तो उन माताओं के ऊपर पाप चढ़ते हैं या नहीं?
ये कौन सी मुरली की बात हो रही है?
मुरली के
हैं
पसंद के बाबा कहते हैं जो भागदौड़ की सेवा करती है उनके पैर के नीचे कीटाणु मरते हैं तो ही पाप।
अरे ये कौन सी मुरली की बात कर रहे हैं? ये मुरली की बात है, क्लेरिफिकेशन की बात है, अव्यक्तवाणी की बात है।
क्लेरिफिकेशन में बोला है, क्लेरिफिकेशन में
क्या
मुरली पढ़ना ये इससे पाप नहीं बनता है?
अच्छा,
इच्छा सागर मंथन करने से पाप नहीं बनेगा
जी,
परंतु सेवा में भागदौड़ जो होती है ना तो उससे अगर कुछ जंतु अगर पाव के नीचे आ जावे तो उससे पाप बन जाएगा
जी।
ऐसा मतलब सेवा में भी पाप होता है?
सेवा में भी पाप होता है?
माने जो स्थूल कर्मेंद्रियों की सेवा है वो संपन्न सेवा नहीं है। क्या वाचा की सेवा है वो भी संपन्न सेवा नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ मिक्स हो जाता है, अपनी बात मिक्स हो जाएगी। तो मनसा सेवा है, अगर एकाग्रता की शक्ति प्राप्त हुई है, एकाग्रता का अभ्यास पक्का हो गया है, तो मनसा सेवा से संकल्प सिद्धि हो सकती है। ये बोला। हाँ
वही वो माताएं साफ करती है ना, मतलब धान चावल वगैरह गेहूं साफ करती
है, उसमें वो कर्मेंद्रियों की सेवा नहीं है,
उसके कीटाणु मरते हैं ना,
वो भी तो कर्मेंद्रियों की सेवा है। अच्छा ये तो स्वतः ही साबित हो गया, कोई भी कर्मेंद्रियों की सेवा हो वो संपन्न स्टेज की सेवा नहीं है।
मतलब मन एकाग्र होने के वाचा कर्मणा को तो अमल में लाना चाहिए, मनसा जब तक एकाग्र न हो तब तक मन मनसा सेवा नहीं होगी।
ठीक बात है, न होने से तो कुछ होना अच्छा है। मनसा की एकाग्रता एकाग्रता भी मिली नहीं, और वाचा की सेवा भी छोड़ दी, और कर्मेंद्रियों की सेवा भी छोड़ दी, तो सेवा का बैलेंस तो बनेगा ही नहीं। बाप तो सबसे पहले बच्चों को प्यार करते हैं, याद करते हैं, तो हमको बाप की याद ही नहीं मिलेगी तो हमारे में पावर कहाँ से आएगी। कोई भी कर्मेंद्रियों की सेवा करेंगे वो संपन्न सेवा नहीं है, उसमें कुछ सेवा भी होगी और कुछ न कुछ इस सर्विस भी होगी।
तो बाबा की याद से सेवा कर रहे हैं, 100% याद हो,
अगर 100% याद है तो कर्मेंद्रियों को भागदौड़ कराने की और वाचा चलाने की दरकार ही नहीं, फिर तो वाइब्रेशन सारा कार्य करेगा। वाइब्रेशन से जब राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं तो क्या नहीं हो सकता।
बाबा अभी पूरे अच्छे वाइब्रेशन बने नहीं, इसका मतलब पूरे अच्छे वाइब्रेशन नहीं बने हैं।
ये कौन कह रहा है कि बन गए?
बाबा ने उदाहरण दिया कि कहा जाता है आज की दुनिया में जो भाई बहन को गंदा कर देता
है,
भाई बहन को गंदा कर देता है
उसको पतित कहा जाता है।
मुरली बाबा ने ऐसा
ये मुरली में डायरेक्ट वो नहीं बताया कि भाई बहन को गंदा कर देता है, बाप बच्ची को गंदा कर देता है, उसी को पतित कहा जाता है, उनको तो महापतित कहा जाता है। पतित का क्लेरिफिकेशन दिया है शक्ति छीण हो जाए माना पतन हो गया।
तो उसने कहा कि पिता पिता को पतित से पतित कैसे करें?
पतित से पतित अनेकों से संबंध है तो पतित से पतित नहीं है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जावेंगे तो पुजारी मूर्ति को छूने देते हैं, तो पावन मूर्ति है या पतित मूर्ति है? पावन मूर्ति है, वो तो जड़ है, वो यादगार जड़ जो है उसको भी नहीं छूने देते। और जब चैतन्य अपनी स्टेज को पकड़ लेगी तो ऐरा गहरा नथु गहरा उसको टच कर सकेंगे। अभी तो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सबको चांस है, आओ गले से लग जाओ।
सत्यनारायण की ही पूजा होती है, सत्य लक्ष्मी की पूजा नहीं
होती है क्या? होती है क्या? आप जाने आप 63 जन्म पूजा नहीं की?
आप बोल रहे हो ना
माने किस धर्म के हैं आप? तो तेसर जन्म में लक्ष्मी नारायण की कथा या पूजा नहीं की ही ना, तो लक्ष्मी नारायण की कथा सुनी या सिर्फ नारायण की कथा सुनी?
सत्यनारायण की कथा।
हाँ, फिर आगे क्या? आगे भी कुछ कहना चाहते थे ना?
सत्यनारायण की कथा क्यों नहीं?
क्यों नहीं? अब काम नहीं करेंगे तो कथा कहाँ से होगी?
जब एडम एंड ईव दोनों का टाइम है, भारत देश में गॉड फादर का टाइम है, भारत से गॉड मदर,
बोलो बोलो बोलो,
गॉड मदर का टाइम नहीं है भारत के विदेश में।
भारत के विदेश में
गॉड मदर का टाइम नहीं है, सिर्फ गॉड फादर का टाइम है।
अरे भारतीय परंपरा में सिर्फ पुरुष को ही ये रूप दिया जाता है भगवान का, स्त्री को भगवान का रूप नहीं दिया जाता। ये तथा कथित तो ब्राह्मण है, चंद्रवंशी से लेकर के इस्लाम बौद्धी क्रिश्चियन वंशी, जो स्त्री रूप को भी भगवान समझ करके बैठ जाते हैं।
फिर तो बाबा का ये चित्र लक्ष्मी नारायण का झूठा हो जाएगा।
वो गॉड फादर नहीं है, गॉड फादर गॉड इज वन कहा जाता है या डबल कहा जाता है?
क्यों भगवान के साथ भगवती नहीं होती है?
वो देवी देवताएं कहे जाएंगे, देवी देवताओं से देवी देवताओं का जन्म होगा और भगवान से भगवान भगवती का जन्म होता है। इसलिए मुरली में बोला है वास्तव में भगवान तो एक है, गॉड इज वन कहा जाता है और गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है, नहीं तो दो होने चाहिए।
भगवान भगवती के
एडम और ईव का गायन है ना,
भगवती आती है चंद्रवंश से, इसलिए भगवती कही जाती है।
एडम ईव दोनों का गायन है ना,
गायन ईव का भगवान के गॉड फादर के रूप में नहीं है,
गॉड फादर के रूप में है।
गॉड मदर को नहीं मानते विदेशी लोग, ईव शब्द जो है वो विदेशियों का है या स्वदेशियों का है, और विदेशी लोग गॉड मदर को मानते हैं क्या? आप कहते हैं
नहीं मानते, मैं वो ही तो बोल रही
हूं। आप बोल रहे हैं ना अभी? हाँ जी,
बाबा भारत में शंकराचार्य की परंपरा जब से शुरू हुई तभी से हिंदू धर्म का उत्थान हुआ है।
उत्थान हुआ?
हिंदू धर्म अस्तित्व में कैसे है?
हिंदू धर्म का उत्थान हुआ,
हिंदू धर्म का अस्तित्व आया ना बाबा?
हाँ,
बोलचाल में ही सही, लेकिन
अस्तित्व में आया लेकिन उत्थान नहीं हुआ, हर धर्म का पतन हुआ, सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं, सभी धर्मों का पतन होता है।
शंकराचार्य ने उसका
शंकराचार्य उत्थान नहीं किया,
बड़े समय के लिए थमाया, कहो
थमाया बस,
उत्थान नहीं किया।
हाँ जी
भारत माता है तो भारत पिता भी तो होना चाहिए, भारत माता जो है शिव शक्ति अवतार, वो जड़ जमीन का तो नाम ही है, कोई एक आत्मा है जिसको बाबा ने मुरली में बताया कि 66 की मुरली में 10 वर्ष कम 5000 साल पहले कि भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होगा, उसी एक आत्मा के लिए बताया।
भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए,
तो भारत माता और भारत पिता की वो प्रवृत्ति नहीं हुई क्या? प्रवृत्ति माँ कैसे कहेंगे, वो दोनों सन्यासी थोड़ी है, वो दोनों माँ पिता तो प्रवृत्ति माँ हो गई, फिर उसको सन्यासी थोड़ी कहेंगे।
किसने कहा? आपने कहा होगा?
किसने नहीं कहा, कहते हैं इसकी अम्मा।
आप सन्यास धर्म को मानते होंगे?
नहीं बिल्कुल नहीं।
फिर
तो जब भी जगत पिता और वो भारत माता की दोनों की प्रवृत्ति है, तो क्या जगत पिता अलग रहेगा, भारत माता अलग रहेगी या उनके साथ रहेगी?
कंधे पे चढ़ करके रहना इसको ही रहना कहा जाता है या बुद्धि से साथ रहना इसको साथ रहना कहा जाता है? संगम युग में किस बात की प्रायोरिटी होनी चाहिए? मन बुद्धि की प्रायोरिटी होनी चाहिए। लौकिक में भले तन के साथ हम किसी साथ बंधे हुए हैं, एग्रीमेंट किया हुआ है, तन का एग्रीमेंट किया हुआ है ना, तो जो तन का एग्रीमेंट किया हुआ है वो भी निभाना है। अगर उस तन के एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो जैसे वंश परंपरा जो चली आ रही है सनातन धर्म की, उस परंपरा को तोड़ देते हैं। इसलिए कहा दोनों तरफ तोड़ निभानी है, लौकिक में भी तोड़ निभानी है और अलौकिक में भी तोड़ निभानी है। अलौकिक में बुद्धियोग से साथ रहना है और लौकिक में शरीर से साथ निभाना है। शरीर से साथ निभाना है का मतलब ये नहीं रहे कि बुद्धि भी उसमें रमण करानी है। बुद्धि एक बाप की तरफ रहे, तन के साथ अगर कोई जबरदस्ती करता है, अत्याचार करता है तो तन को मुर्दा बना दो और मन को बुद्धि को बाप के पास उठा के रख दो, बाप को बच्चा बना दो बीच में। प्रवृत्ति न लौकिक में तोड़नी है और न अलौकिक में तोड़नी है। ये बुद्धि की बात है, नष्ट हुआ का मतलब ये नहीं है कि तन के साथ जो एग्रीमेंट किया है वो भी तोड़ देना। मन बुद्धि से जो माताएं नष्ट हुआ हो जाती हैं, वो तन की कोई कितनी भी छेड़छाड़ करे मुर्दा बना देंगी, क्योंकि अपनी कोई इच्छा नहीं है। जिनको ये बात नहीं आती है वो फिर छोड़ के भागना चाहते हैं। बुद्धि से हमेशा मिले हुए हैं, कभी क्यों नहीं मिलते?
ओ, हंस और उगले साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, ये भी तो कहा।
एक तो है
तो ये कब की बात,
अंत समय की बात है। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था,
अंत भी और बाकी है समय
है?
के लिए समय बाकी
बोल रहा है।
बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है।
संपूर्ण पवित्रता और संपूर्ण पवित्रता और पवित्रता इसमें क्या अंतर?
जैसे एवर प्योर कहती है और प्योर कहती है, देवताएं पवित्र होते हैं लेकिन एवर प्योर नहीं होते। क्या देवताओं को क्या कहेंगे? पवित्र हैं, प्योर हैं, लेकिन एवर प्योर नहीं है। इसलिए लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को पुजारी छूने नहीं देता। क्यों नहीं छूने देता? क्या समझता है? हैं? अगर इनको टच करेंगे तो ये मूर्ति को अपवित्र कर दिया, सिवाय ब्राह्मण के और कोई टच नहीं कर सकता। हम पंडे पुजारी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम टच कर सकते हैं। इसलिए वो एवर प्योर की स्टेज नहीं है देवताओं की। एवर प्योर वो है, संपूर्ण पवित्र वो है जो संसर्ग संपर्क में भी आता रहे और फिर संग का रंग न लगे, वो एक ही है।
तो क्या बाबा लक्ष्मी कभी नारायण के साथ नहीं जाएगी? सिर्फ मन बुद्धि सही रहेगी।
मैंने देह को क्लियरिटी देना जरूरी है।
ऐसी तो कोई बात नहीं है, चित्र क्या काम के, तो फिर वो दिखाना चाहिए।
चित्र चरित्र की यादगार है न कि देह की यादगार है। वो चरित्र ऐसा श्रेष्ठ बजाया हुआ है जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है। अंतर नीचे राधा कृष्ण खड़े हुए हैं और ऊपर लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं। क्या अंतर दिखाया गया चरित्र में? राधा कृष्ण एक दूसरे को दृष्टि का योगदान दे रहे हैं, दृष्टि का लगाव लगा हुआ है। और लक्ष्मी नारायण का दृष्टि मात्र का भी लगाव नहीं है। हाँ जी,
तो कहाँ पे बनेगा प्रैक्टिकल में? तो आपने
जमुना के कंठे में बनेगा और कहाँ बनेगा?
मगर आपने तैयारियाँ तो कर दी।
क्या
जमुना के कंठे पर?
तो
लक्ष्मी नारायण नहीं रहेंगे वहाँ?
लक्ष्मी नारायण नहीं रहेंगे,
छोटे से संगठन में नहीं।
ये किसने कहा नहीं रहेंगे?
अगर द्वितीय योग से ही रहना है
हाँ?
तो फिर वो क्या प्रैक्टिकल में नहीं रहेंगे?
क्यों नहीं रहेंगे? बुद्धियोग से लक्ष्मी और नारायण साथ रहेंगे, लेकिन नारायण को विश्व का मालिक पना भी पार्ट बजाना है या नहीं बजाना है, और लक्ष्मी को घर संभालना है या विदेश संभालना है? घर संभालना है। वो घर की लक्ष्मी है, वो विदेश का भी संभालना है, घर को भी देखना है। तो कोई जरूरी है कि वो घर में ही घुसा बैठा रहे?
जब नारायण बन जाएगा तो घर में बैठ सकते हैं। जब नारायण बन जाएगा
हाँ?
तब घर में बैठ सकता है।
2036 तक नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा मिलेगा। नरक की दुनिया भी होगी और स्वर्ग का नजारा भी दुनिया को समझ में आवेगा कि ये पैराडाइज है, ये जन्नत है, और शास्त्रों में उसका गायन रहेगा।
तीन धाम बनेगा ना, दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम।
हाँ जी,
तो दुख धाम क्या 2036 तक चलेगा? दो धाम तो रह जाएंगे, सुख धाम और शांति धाम, एक धाम को बिना सोना है।
कब रह जाएंगे? दो धाम कब रह जाएंगे?
सतयुग में
कौन से दो धाम रह जाएंगे?
सुख धाम और शांति धाम।
सतयुग में शांति धाम होगा?
शांति धाम से सुख धाम में ट्रांसफर हो जाएंगे ना?
ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा धाम रहेगा तो नहीं
रहेगा।
हाँ,
तो दुख धाम 2036 तक चलेगा?
अरे चलेगा नहीं तो दुनिया का विनाश कब होगा? सारी दुनिया का विनाश एटमिक विश्व युद्ध में होगा या उससे पहले हो जाएगा? लास्ट जो एटमिक विश्व युद्ध होगा उसमें सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। पूरा विनाश हो जाएगा तो पूरी स्थापना भी हो जाएगी। पहले स्थापना होगी फिर पूरा विनाश भी हो जाएगा।
अच्छा बाबा, एक और पॉइंट है सीडी के चित्र में से कि जो तीन गतियां हैं जो खंडित हो चुकी है त्रेता युग में, तो क्या उसको 21 जन्म में लेके जाएंगे? 21 जन्म कहेंगे उसको?
खंडित गद्दियां जो दिखाई गई है वो कोई जन्म नहीं है क्या?
मगर उसमें तो दूसरे जन्म की आत्माएं राज्य करती है।
स्वर्ग में थोड़े ही राज्य करेंगे।
आपने तो कहा हर तरह की
जो खंडित सीढ़ी दिखाई गई है स्वर्ग की, उसमें इब्राहिम आएगा क्या या उसके बाद आएगा? है उसके बाद ही तो आएगा।
विदेशी बाप को पहले प्रत्यक्ष करेंगे, 76 की बात है, तो वो धर्म पिता है उनको तो वो गद्दियाँ मिलती है।
हाँ।
तो वो गद्दियाँ जो तीन मिलती है तो फिर ये जो 21 जन्म है वो उसमें थोड़ी काउंट किए जाएंगे।
क्यों नहीं काउंट किए जाएंगे?
तो क्या वो राम सीता वाली आत्मा भी उसमें ये करेगी राज्य?
राज्य क्यों करेगी? राम की सीता वाली आत्मा पहले जन्म में राज्य करेगी, हर जन्म में राज्य करेगी है? पहले जन्म में राज्य करेगी।
यज्ञ के आदि में
है,
यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा ने यज्ञ छोड़कर चले गए, तो राम और राम के फॉलोअर्स ने भी यज्ञ छोड़ दिया नंबर वन, तो उस समय कितने आत्माओं ने छोड़ा था? राम जैसे सूर्यवंशी ग्रुप का सूर्य और सूर्य के जो 11 फॉलोअर्स हैं, क्या उन्होंने छोड़ा था यज्ञ?
तो नंबर वार ही छोड़ेंगे ना।
तो क्योंकि उस समय उसके बाद जो सेकंड पावरफुल ग्रुप है चंद्रवंशी का, वो तो 47 तक थी।
47 तक क्यों थी?
चंद्रवंशी की हेड तो थी ना,
वो उसके बाद नहीं थे? चंद्रवंशी अभी नहीं है क्या?
नहीं नहीं, यज्ञ के आदि की बात बाबा।
हाँ, यज्ञ के आदि में भी चंद्रवंशी गए ही कहाँ? चंद्रवंशियों की गोद में तो सभी वंश पलते रहे।
चंद्रवंशी नहीं गए तो बाकी के तो इस्लामवंशी, बौद्धवंशी, कृष्णवंशी जो
कहाँ गए?
वो तो गए ही नहीं,
सब यज्ञ में रहे।
तो फिर बाबा ने बोला कि जो 4.5 लाख आत्माएं हैं जो बाप के साथ यज्ञ के साथ ही चले गए, बाप के पीछे पीछे, वो कैसे बाबा?
थोड़े थोड़े करके बीच बीच में जाते रहे जाते रहे जाते रहे, सूर्यवंशियों को विदेशी लोग फोना मारते रहे मारते रहे, वो भागते रहे।
आदि में 4.5 लाख संख्या थी बाबा यज्ञ में,
36 में 9 लाख आबादी थी सिंध हैदराबाद की।
तो वो तो बाबा सेवक राम के संपर्क में आई है, ऐसा कंपलसरी है क्या? जो 4.5 लाख आत्माएं थी उसमें से 2.5 लाख तो रुद्रमाला की आत्माएं होंगी, और 2.25 लाख जो है वो विजय माला के मनकों के।
4.25 लाख की बात 4.5 लाख की कर रहे हैं और हम कर रहे हैं 9 लाख की बात। जो सिंध हैदराबाद में जो भी 9 लाख आबादी थी वो सारी ही आबादी को संदेश मिला।
लेकिन सिर्फ संदेश मिला ना, संपर्क में आना कंपलसरी तो नहीं है?
जो संपर्क में आए वो ज्यादा नजदीक आए, संबंध में आए वो और नजदीक आए, क्लोज कनेक्शन में आए वो ज्यादा गहरे संबंध में आ गए।
और कुछ ऐसी आत्माएं भी होगी जो संपर्क में आए नहीं, सिर्फ जो
जिस सुन लिया, मान लिया, हाँ भगवान का पाठ चल रहा है, हमें धंधे धोरी से बोलते नहीं,
तो वो 4.5 लाख में नहीं आएंगे ना?
क्यों नहीं आएंगे?
9 लाख में आएंगे,
वो भी 9 लाख में आएंगे।
नहीं बाबा 9 लाख नहीं, 4.5 लाख की जो बात करेंगे, 4.5 लाख जो आगे आने वाले स्वर्ग में जो जन्म देने वाले
जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं वो 4.5 लाख, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, ज्ञान को पूरा नहीं समझते, शरीर रहते रहते वो जन्म लेने वाले बनते हैं।
पूरा पुरुषार्थ करने वाले हैं वो
बदल
पूरा
बिल्कुल तुमने तो चेंज कर लिया, इच्छा है ना? तो हमारे यहाँ का डिस्कशन ज्यादा लंबा चले, दिन भर चलाओ हमें क्या? हमको क्या अंतर पड़ता है, हम तो आराम से पी रहे हैं बीच बीच में। उसकी दोनों बैटरी डिस्चार्ज हो गई है? हाँ, दोनों बैटरी भी, दोनों कैसेट भी गई, तीसरी कैसेट लेने गया।
कोई खुश है कि प्रैक्टिकल सचिव कब से शुरू, जब तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाती
है? तीनों मूर्तियाँ जब प्रत्यक्ष होती हैं तो त्रिमूर्ति शिव बाप प्रत्यक्ष होता है, बाप आते हैं तो क्या बना देते हैं, नरक को स्वर्ग बना देते हैं। तो तीन मूर्तियां प्रत्यक्ष होना माना फाउंडेशन ही नहीं पड़ेगा कुछ ब्राह्मणों के लिए। हाँ, वो स्वर्ग की स्टेज जो है वो पक्की हो जाएगी।
अपने चलन और चेहरे से बाप की प्रत्यक्षता की जो बात आई है,
हाँ जी,
तो मतलब ऐसे ही है क्या वो?
दुनिया के बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर्स, बड़े बड़े कारखाने चलाने वाले सेठ, बड़े बड़े राज्याधीश, बड़े बड़े अधिकारी, कलेक्टर, मिनिस्टर, वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे या बाप के पुरुषार्थ करने वाले तीव्रता से दौड़ने वाले बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? जो नंबर बार मालाएं बनी हुई हैं, वो किस आधार पर बनी है? जो पुरुषार्थ की संपन्नता जिन्होंने पहले प्राप्त की है वो बाप को पहले प्रत्यक्ष करेंगे। हाँ जी
बाबा, जो आपने कहा संपूर्ण पुरुषार्थ करने वाले 4.5 लाख आत्मा है और जो संपूर्ण पुरुषार्थ नहीं कर पाते वो बचे 4.5 लाख आत्मा है 9 लाख में से।
हाँ जी,
तो ये जो 4.5 लाख आत्मा है जो संपूर्ण पुरुषार्थ करती है वो तो सब तो संपर्क में तो नहीं आ सकती?
अगर सब संपर्क संबंध में नहीं आ सकती, लेकिन संपर्क में तो आ सकती है। अगर नहीं आवेगी तो तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। वो परमधाम की स्टेज आत्मिक स्टेज 4.5 लाख की कैसे बनेगी? इकट्ठे रहेंगे तब बनेगी या सारी दुनिया में बिखरे हुए होंगे तब बनेगी?
बाबा
हाँ,
नर की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा देखने को मिलेगा 2036 में। 2036 तक नर की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा देखने को मिलेगा। तो कृष्ण तो पावन दुनिया में जन्म लेने वाले आत्मा है ना, तो वो 9 लाख आत्माओं के बीच
बोलो बोलो,
कृष्ण
की आत्मा तो कौन दुनिया के पति दुनिया में कैसे पैदा होगा?
स्वर्ग का नजारा माने तो 9 लाख आत्मा होगा दुनिया के बीच, दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा देखने को मिलेगा।
बोलो क्या कह रहे
हैं? उनका कहना है पुरानी दुनिया के बीच स्वर्ग का मॉडल तैयार होगा ना प्रैक्टिकल में, उसमें उस ओ दुनिया में वो कृष्ण कैसे जन्म ले पुरानी दुनिया में, वही ना
वही उनका यज्ञ के आज में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियां बह रही थी 1947 में
सैंपल बना थे।
और कराची में एक स्थान ऐसा भी था जहां कोई भी विरोधी नहीं थे, बड़े आराम से रहे पड़े थे और कृष्ण की आत्मा भी वहां थी या नहीं थी? वो तो सैंपल हुआ। जब सैंपल ऐसा हो सकता है तो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता क्या?
ने कहा कि मनमुक्ति से जितना याद करेंगे उस स्थान को तो वहां प्रैक्टिकल पहुंच ही जाएंगे।
वो तो आज से लेकर के अंत तक के पुरुषार्थ की बात है। जिन्होंने जितना ज्यादा व्यभिचारी पुरुषार्थ किया होगा वो पहुंच जाएंगे, नहीं किया होगा तो नहीं पहुंचेंगे।
नहीं, मगर उसको पता कैसे पड़ेगा कि अभी वहां पहुंचना है, उसके लिए पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा।
बोला है टंग काल आवेगा, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो आवेगा, नहीं तो नहीं आवेगा। राधा कृष्ण का नाम में राधा पहले क्यों, लक्ष्मी नारायण के नाम में लक्ष्मी पहले क्यों, सीताराम कहा जाता है तो सीता पहले क्यों, यही पूछा ना। पहले उसको रखा जाता है जिसके बिना काम ही न चले। क्या ये रुद्रमाला ऐसी लंगड़ी है कि जब तक अंधों का सहारा नहीं लेगी तब तक नदी पार कर ही नहीं सकती, इसलिए लक्ष्मी का नाम, सीता का नाम और राधा का नाम पहले रखना होता है। और
बाबा योग करने का मुश्किल है रात को 9 बजे मंदिर के टाइम में, तो शायद पर करते रखते हैं, लेकिन योग में क्यों नहीं आते बाबा, और याद में क्यों नहीं आते बाबा, यहाँ और शिवबिंदु
बाबा याद में नहीं आते,
क्यों नहीं आते
हैं बाबा, नाराज हो गए होंगे आपसे हैं। आपने कोई राज की बात छुपाई ली होगी, बाबा को बताई नहीं होगी तो बाबा नाराज हो गए। सबको ऐसा होता है क्या, एक दो लोग करें, सबको तो नहीं होता है।
बाबा अष्टदेव है जो प्रकृति के 5 तत्वों में से जल वायु अग्नि इनको देव के रूप में बताया, लेकिन पृथ्वी और आकाश को नहीं बताया। पृथ्वी और आकाश जो 5 तत्वों में से इनको देव के रूप में नहीं बताया, तो ऐसा क्यों बाबा?
आकाश को तो द्युलोक कहा गया है और पृथ्वी को द्यावा कहा गया है। द्यावा पृथ्वी ये 2 माता पिता हैं। पिता ऊपर है, पृथ्वी माता नीचे है। क्या वो ऊंची स्टेज में है और वो नीची स्टेज में है। दोनों की मान्यता माता पिता के रूप में दी गई है। वो माता पिता हैं, जो माता पिता हैं वो सारी सृष्टि के माता पिता हैं या सिर्फ देवताओं के हैं? वो माता पिता हैं, वो देवताओं से भी ऊपर है, उनको देवता के रूप में नहीं दिखाया जा सकता।
अष्टदेव जो 8 दिशाओं से आती है, तो बाकी की जो 2 दिशाएं बची है ऊपर और नीचे,
कौन सी 2 दिशाएं बची?
ऊपर का और नीचे का।
वो कोई दिशाएं थोड़ी होती है, दिशाएं जो होती है देश और विदेश, ऊपर नीचे नहीं होते, ये सृष्टि की बात है।
अच्छा बाबा एक कौन समझते हैं देह और देह के संबंधी देह के पदार्थ को भी याद नहीं करना, किसी के लिए भी नहीं कराना चाहिए, सिर्फ आत्मा समझना है। फिर बुद्धि तो जाएगी ना स्थूल भोजन बनाने के लिए, सब्जी लेने को जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, दाल।
किसी की किसी से दिल लग जाती है, जो नौजवान दिल होता है ना वो कोई से लग जाता है, दिल लग गई तो कारखाने में काम करना जाता है, किसको याद करता है, है? महबूबा को याद करता रहता है, कारखाने में काम भी करता रहता है कि छोड़ देता है। कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म की धारा तो चलेगी, बुद्धियों का अपना काम कर सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि माँ बाहर खेलने गए हुए बच्चे को याद नहीं कर सकती चक्की पीसते हुए। याद कर सकती है या नहीं कर सकती है? दाना चक्की में डालना भूल जाएगी या बिखेर देगी? है प्रैक्टिस की बात है, जिसने प्रैक्टिस की वो परफेक्ट बनेगा, जिसने प्रैक्टिस नहीं की वो परफेक्ट नहीं बनेगा।
हमें तो कर्मयोगी रहेंगे तभी गलत काम होएगा ही नहीं ना,
ये तो बुद्धियों की तीव्रता के ऊपर है। ऐसे थोड़े ही कि दूध गर्म कर रहे हैं और बाबा की याद में याद करते करते पता नहीं बुद्धि कहाँ की कहाँ चली जाती है, समझते हम तो याद में है, दूध फिर भी फैल गया। जो एक्यूरेट याद है उसमें इतनी एकाग्रता होगी कि कर्म बिगड़ ही नहीं सकता।
और बाबा स्वर्ग में अतीन्द्रिय सुख होता है, तो अतीन्द्रिय सुख माना इंद्रिय अनेक होने के बावजूद मन द्वारा जो सुख भोगते हैं,
स्वर्ग की बात नहीं है वो,
माना संगम
युग, माना संगम युग का अपनी पक्की बात बोलो।
संगम युग स्वर्ग का माना,
ये इसमें नूर हो जाता है ना, फिर वो लोग ये उठाएंगे जब आपने ये बात स्वीकार कर
ली। संगम युग स्वर्ग में बाबा, तो मन द्वारा सुख भोगा जाता है।
हाँ जी,
तो फिर जो लक्ष्मी नारायण है,
हाँ,
फर्स्ट लक्ष्मी नारायण,
हाँ,
जो जनरेशन पैदा करने के बाद एक सीमित समय बाद वो भी शरीर अपना त्याग करेंगे,
ठीक है,
तो वो त्याग करने के लिए कौन सा संकल्प कैसे आता है बाबा, क्योंकि शरीर तो हानि पहुंचाती तो नहीं है उस समय, कि शरीर छोड़ने के लिए क्या संकल्प, ये संकल्प कैसे आता है कि ये शरीर छोड़ना है?
काम पूरा हुआ, शरीर छोड़ना है
वो तो, लेकिन वो कौन सा काम, सिर्फ जनरेशन पैदा करके तुरंत थोड़ी शरीर छोड़ देगा।
जनरेशन पैदा होगी 18 में,
हाँ।
शरीर छोड़ेंगे 36 में या 36 के बाद,
हाँ।
तो 18 की कहाँ बात हुई?
हाँ, तो फिर शरीर छोड़ने के लिए संकल्प कहाँ से आता है, क्योंकि वो तो सुख भोग ही रहे हैं ना बाबा उस शरीर में।
सुख भोग नहीं रहे हैं, उनका लक्ष्य है जीवन का, क्या लक्ष्य है? नरसे नारायण बनने का लक्ष्य के साथ साथ पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना लक्ष्य है। ये दोनों लक्ष्य पूरे हो जाए तो क्या करना है, है? क्या करना है? अरे 500 करोड़ ऊपर चले गए, क्या करेगा? जयशंकर प्रसाद ने एक कविता भी लिखी है प्रलय के बारे में,
मैं 3 बार ब्राह्मण जन्म लेने वाली आत्माओं की हुई गति बहुत रहस्यमय है, बता रही
हूँ। हाँ,
रहस्य क्या है?
3 बार जन्म
लेने वाले, जैसे और भी ब्राह्मण आत्माएं 3 बार जन्म लेंगी, उसका रहस्य क्या है?
कमजोर आत्माएं होती है, हिम्मत छोड़ देती है, उनके 3 जन्म भी हो सकते हैं, नहीं तो संगम युग में ये पक्का हो जाता है, मैं बाप मिल गया तो कौन सा भी छोड़ना चाहेगा? चलो यार प्यार बाद में, हाँ।
2018 में मतलब जन्म लेंगे और परम धाम में कब जाएंगे फिर 2036 के बाद परम धाम में कब जाएंगे
परम धाम पहले ऊपर होगा या नीचे होगा
नीचे होगा
550 करोड़ जाने वाले हैं ना लाट में जो है वो बाबा लाट में ये सब मतलब जो बोला है ना
क्या बोला है
लाट में मतलब पहले सब लोग 550 सूक्ष्म वतन में रुकेंगे और बाद में लाट में लाल बाबा जाएंगे तो उस टाइम पे 2036 की बात है लेकिन तो कृष्ण जी जो अपना जन्म लेने के बाद भी वो
तो उसकी दुनिया अलग हो गई वो तो नारकीय दुनिया में है क्या वो नारकीय दुनिया में है या स्वर्ग दुनिया में अरे वो तो पहले ही बाप के साथ ही परम धाम में है योग से वो तो सुखधाम में है परम धाम जैसे ही तेज में आ गई शांति धाम से भी ट्रांसफर हो गया हाँ जी
बाबा जो भट्टी करते हैं बाप का बनते हैं ब्रह्मचार्य का प्रतिज्ञा करते हैं उसके बाद विकार में जाते हैं सदगुरु निंदक में निंदक पक्ष में आए
नहीं वो बिल्कुल निंदक में नहीं आएंगे
नहीं बाबा
तो वो मैंने कुछ गुंजाइश रखी है देखो ये लोग मेंटलिटी को भी पकड़ रहे हैं
ऐसे नहीं बाबा बाबा ने बोले सदगुरु निंदक ठोर ना पावे तो वो किस आधार पे फिर ठोर ना पावे की लिस्ट में जाएंगे
नहीं तो बताया जिन्होंने निंदा कराई वो नजदीक ठोर नहीं मिलेगा उनको
नजदीक ही पता
हाँ जी दूर गिरेंगे जितनी निंदा कराई उतना दूर ज्यादा निंदा कराई ज्यादा दूर थोड़ी निंदा कराई थोड़ी दूर इतना और उतने का हिसाब किताब है कोई सदाकाल यशोदा बन करके रहे तो नजदीक होंगे या दूर होंगे हैं? नजदीक होंगे यश देने वाले बन करके रहे तो नजदीक रहेंगे
और देवकी बन के
जरूर दूर जेल में पड़े हुए
दम देने के बावजूद भी
जेल में पड़े हुए जन्म माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म भी दे दिया बहुतों ने जान लिया ये भगवान का रूप है फिर भी खुद कहाँ पड़े हुए जेल में पड़े हुए
प्रजापिता वाली सोच हर धर्म में जाके हर धर्म की स्थापना
करती है धर्म की स्थापना नहीं करती है
राजाई
की स्थापना करने के लिए जाती है
मगर माला तो बनती है ना हर धर्म
है
माला हर धर्म की नहीं बनाते
बनती है
कौन बनाते हैं उनके धर्म पिता बनाते हैं कि प्रजापिता वाली सोच
हर धर्म की माला बनाने में भी उनके धर्म पिताओं का सहयोग होता है
तो फिर ये जो भी आत्मा है वो सब प्रजापिता को ही याद करती होती है प्रजापिता में शिव को याद करती
है निराकार में निराकार को याद करने वाले
चरित्रवान
बने और जो सिर्फ निराकार को याद करते हैं लाजमी हो जाता है वो क्या बनेंगे चरित्रवान बनेंगे या कुछ और बनेंगे दुष्चरित्र बनेंगे माने वो विदेशी विधर्मी और वो स्वदेशी स्वधर्मी
बाबा शिव बाबा आकर तीन धर्म की स्थापना करते हैं ब्राह्मण धर्म देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म तो इसके धर्म पिता तो साकार दुनिया के मतलब जो तीन देवता हैं वो होते हैं जो तीन देवता होते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर वो उसके धर्म पिता होते हैं
किसके धर्म पिता
ब्राह्मण धर्म के, देवता धर्म के और क्षत्रिय धर्म।
खुद ही तो बोलते जा रहे हैं कि बाप आकर तीन धर्मों की स्थापना करते हैं, तो धर्म पहला एक हुआ या तीन तीन हुए हैं?
नहीं लेकिन तीन ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना।
और ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म, वो ब्राह्मण कंप्लीट ब्राह्मण है या अधूरे ब्राह्मण है? अधूरे ब्राह्मण है। चंद्रवंशी ब्राह्मण है, इस्लामवंशी ब्राह्मण है, बौद्धिवंशी ब्राह्मण है। नौ कुरियों में से गिरती कला की कुरियों के ब्राह्मण है।
और जो देवता धर्म बन गया है
हाँ?
ये कंप्लीट हो गया ना सर?
बन कहाँ गया अभी?
नहीं मतलब कंप्लीट हो जाएगा ना ये
हाँ?
तो ये धर्म को का संस्थापक जो है वो शिव बाबा ही है ना?
तीनों धर्मों की स्थापना शिव बाबा करते हैं। शिव बाबा ही ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना करते हैं, शिव बाबा ही क्षत्रिय धर्म की भी स्थापना करते हैं, और शिव बाबा ही देवता धर्म की स्थापना करते हैं।
निमित्त बनाते हैं ना अलग अलग?
किसको निमित्त बनाते हैं?
ब्रह्मा को। ब्रह्मा के द्वारा
ब्रह्मा ने कहां संपूर्ण देव ब्राह्मण बनाए? ब्रह्मा ने संपूर्ण ब्राह्मण बनाए क्या?
तो कहते हैं ना ब्रह्मा से ब्राह्मण निकले,
निकले लेकिन अधूरे ब्राह्मण बने।
अधूरे नहीं
हाँ जी।
ब्रह्मा के साथ सरस्वती को बिठाया है, ब्रह्मा के साथ सरस्वती यज्ञ माता को भी बिठाया है। जब भी यज्ञ पिता ने सारे धर्मों में जाकर स्थापन की, फिर यज्ञ माता का कुछ कार्य रहता है करने की बाकी रहता है?
किसे यज्ञ माता बताया आपने?
यहाँ पे सरस्वती को बिठाया है, मूर्ति को बताया है ना?
जहाँ सरस्वती को बिठाया है वहाँ उस जगह जगत माता को समझना है, और जहाँ ब्रह्मा को बिठाया है वहाँ जगत पिता को समझना है। उस समय वो पार्ट प्रत्यक्ष नहीं था, इसलिए ब्रह्मा सरस्वती को बैठा दिए।
तो फिर करेक्शन
बोली में बोला हुआ भी है, ये ब्रह्मा पुरुष तन है, इसलिए सरस्वती को निमित्त बना दिया है कन्या माताओं के संभाल के लिए। वास्तव में ब्रह्मा है कौन? बड़ी माँ है ब्रह्मा। और
फिर तो बाबा ने बताया कि ये करेक्शन किया चित्रों को, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा चित्र को करेक्ट करवाया, तो चित्र को ही चित्र को करेक्शन करवाया। ये भक्ति मार्ग ये चित्र लगा है, ज्ञान का विचार रोपण किया, उनके चित्र रखने चाहिए ना, बीज तो दिखाने चाहिए, साल के बीज को मूल को दिखाना चाहिए, साल के आधा मूल को दिखाना चाहिए।
अरे बीज अंत तक गुप्त रहता है, जब झाड़ पूरा हो जाता है, पूरा बढ़ जाता है, तो लास्ट में जाकर के बीज फिर प्रत्यक्ष होता है। बीच में कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा? बाप का पार्टी है गुप्त रहने का। आदि में भी गुप्त था, अगर प्रत्यक्ष होता तो ब्रह्मा बाबा भी पहचान लेते, माता भी पहचान लेती, फिर बच्चे भी पहचान लेते।
तो इनको याद करके सभी ने भक्तिमान की शूटिंग की।
ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, मुरली में बोला गया है फिर भी रखा, तो भक्ति मार्ग हुआ या ज्ञान मार्ग हुआ? और
बाबा
हाँ,
मुरली में सर आया कि अकेला चलना भाड़ नहीं पड़ता।
कहाँ भाड़ पड़ रहा है?
नहीं बाबा, इसका बेहद अर्थ तो बाबा ने समझाया है,
हैं?
बेहद अर्थ तो बाबा ने समझाया है।
हाँ?
भाड़ माना क्या है?
भाड़ माना सारी दुनिया भाड़ ही तो है, सारी दुनिया हैल नहीं है, हैल माना नरक, भाड़। बाढ़ में आग जलती है काम विकार की,
तो उसको चने के साथ ही क्यों कहा
है?
बाढ़ को चना बोलने का
क्या? क्योंकि बंदर चना ज्यादा खाते हैं।
चना तो घोड़े खाते हैं।
हाँ घोड़े भी खाते हैं।